ಚರಣಾರ್ವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವಿಧಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ इस्कॉन बिबड़ी फाउंडर आचार्य जगत गोस्वामी प्रभुपाद की जय, रामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय, प्रेम कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की, ब्रजमय वृंदावन धाम की, नवदीपापुर धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, भक्ति देव की जय, तुलसी महारानी की जय, समावित भक्त वृंद की जय, जय गौर प्रेमानंदे ओ ग्लोरियस असेंबली बोल, ओ ग्लोरियस असेंबली बोल, ओ ग्लोरियस असेंबली बोल, ग्लोरियस टू श्री श्री गुरु एंड श्री गौर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
आज हम श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद अध्याय 16वां और श्लोक संख्या भी 16वां। जी नहीं पढ़ पाएगी, ऐसे ही हमें नहीं पढ़ना है, हमारे पास तो किताब है। सारथ्य
सारथ्य
पार्षद
पार्षद
सेवन
सेवन
सख्य
सख्य
दौत्य
दौत्य
वीर आसन
वीर आसन
अनुगमन
अनुगमन
तवन
तवन
प्रणामान स्निग्धेषु पांडुषु
पांडुषु
जगत
जगत
प्रणतिम च विष्णुः
विष्णुः
भक्तिम
करोति
करोति नृपतिः
नृपतिः
चरणारविन्दे
चरणारविन्दे।
सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासना अनुगमन मस्तव प्रणाम स्निग्धेषु पांडुषु जगत प्रणतिं च विष्णु भक्तिं करोति नृपश्चरणारविन्दे सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमनस्तवन प्रणामान स्निग्धेषु पांडुषु जगत प्रणतिं च विष्णु भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमनस्तवन प्रणामा स्निग्धेषु पांडुषु जगत प्रणतिं च विष्णुः भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे
सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमनस्तवन प्रणामान स्निग्धेषु पांडुषु जगत प्रतिं च विष्णु भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमनस्तवन प्रणामान
क्या? संस्कृत नहीं आती, हिंदी आती, तो ये तो हिंदी है। चलो ठीक है, किताब में से पढ़ पाओगी? अच्छा ठीक, कभी तो ट्राई करनी पड़ेगी। सारथ्य,
सारथ्य
सारथी के पद की स्वीकृति,
सारथी के पद की स्वीकृति।
पार्षद,
पार्षद
राजसूय यज्ञ की सभा में प्रधान पद की स्वीकृति। अगुवानी करना यानी कि सर्वप्रथम पुरुष के रूप में पूजायमान। सेवना,
सेवना
भगवान की सेवा में मन को निरंतर लगाना। सख्य,
सख्य
भगवान को मित्र रूप में सोचना।
भगवान को मित्र रूप में सोचना।
दौत्य,
दौत्य
दूत पद को स्वीकारना,
दूत पद को स्वीकारना।
वीर आसन,
वीर आसन
रात्रि में हाथ में तलवार लिए रखवाले की पद की स्वीकृति। चौकीदार, वीर आस तो अनुगमन,
अनुगमन
चरण चिन्हों पर चलना। स्तवन प्रार्थना करना, प्रणामान प्रणाम करते हुए। निग्देशु जो लोग भगवान की इच्छा के प्रति विनम्र हैं उनको, विनित लोग भगवान की इच्छा के प्रति विनम्र हैं उनको, यानी कि ऐसे भक्त जो विनम्र होते हैं इन लोगों। पांडुषु
पांडुषु
पांडवों में जगत विश्व प्रणति, जिसकी आज्ञा का पालन किया जाए उसको। च तथा विष्णु हो विष्णु की भक्ति,
भक्ति
करोति करता है। द्रुपति राजा चरण अरविंदे भगवान के चरण कमल पर। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान कृष्ण विष्णु की आज्ञा का सारा जगत पालन करता है, उन्होंने अपनी अहितु की कृपा से पांडु के विनित पुत्रों की उनकी इच्छानुसार सभी प्रकार से सेवा की, जिनमें सारथी बनने से लेकर अग्र पूजा ग्रहण करने तथा दूत बनने, मित्र बनने, रात्रि में रक्षक बनकर भी सेवा करने के लिए कार्य में सम्मिलित हैं। उन्होंने सेवक की भांति पांडवों की आज्ञा का पालन किया तथा छोटों की भांति उन्होंने प्रणाम किया। जब महाराज परीक्षित ने यह सब सुना तो वे भगवान के चरण कमल की भक्ति से अभिभूत हो उठे। भगवान कृष्ण पांडवों जैसे अनन्य भक्तों के सर्वस्व हैं, वे उनके लिए परमेश्वर, गुरु, आराध्य देव, पथ प्रदर्शक, सारथी, मित्र, सेवक, दूत तथा जो कुछ भी सोचा जा सकता है वो थे। इस प्रकार भगवान ने पांडवों की भावनाओं का प्रतिदान दिया। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में महाराज परीक्षित भगवान द्वारा अपने भक्तों की भावना के दिव्य प्रतिदान का महत्व समझ सकते हैं और इस तरह वे स्वयं भगवान के आचरण से अभिभूत थे। मात्र अपने शुद्ध भक्तों के साथ भगवान के आचरण के महत्व को समझकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि भक्तों के साथ भगवान के आचरण सामान्य अमानवीय आचरण प्रतीत होते हैं, लेकिन जो उन्हें ठीक से समझता है वह भगवत धाम जाने का भागी बन जाता है। पांडव गण भगवान की इच्छा के प्रति इतने विनित थे कि वे भगवान की सेवा में कितनी ही शक्ति लगा सकते थे और ऐसे अनन्य संकल्प से वे इच्छित रूप में भगवान की कृपा के भाजन बन सकते थे। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीचुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथ। अर्थान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामान स्निग्धेषु पाण्डेषु पाण्डुषु जगत् प्रणतिं च विष्णोर् भक्तिं करोति नृपतश्चरणारविन्दे। तो परीक्षित महाराज अपने पूर्वजों का यशोगान भगवान के संबंध में सुनते हैं और इनकी भक्ति भगवान के प्रति और बढ़ जाती है। ऐसे गुणगान द्वारा हरेक के हृदय में ये भी स्फुरणा होती है कि भगवान के साथ यदि हमें कभी ऐसा कार्यकलाप करने को प्राप्त हो, सामान्यतः ये तो बहुत दुर्लभ है। इसके संदर्भ में ही कल हमारी ईमेल में अपने एक शिष्य ने प्रश्न पूछा कि महाराज जी में ये थोड़ी समझ में दिक्कत आती है कि जब दक्ष के यज्ञ में गड़बड़ी हुई थी, शिव जी का अपमान हुआ था, शिव जी ने दक्ष का सिर काट लिया, शिव जी के अनुचर वीरभद्र इत्यादि ने ब्राह्मणों को काफी पीटा, कहीं के दांत निकाल दिए, कहीं के मूछे फाड़ दी, क्या क्या नहीं कर दिया, कितना ये तो धार्मिक व्यवस्था में इतना बवंडर हुआ, नुकसान। वो करने जा रहे थे यज्ञ, लेकिन जब विशुद्ध भक्त का अपमान होता है सब छपाचक। जब इन लोगों की खोपड़ी ठिकाने आई कि विशुद्ध भक्त का अपमान हुआ है, तो उनकी माफी मांगने लगे, तब शिव जी ने बकरे का सिर काट करके दक्ष के ऊपर चिपका दिया और उसे जीवित कर दिया। और सभी जो गुरु जैसे सब ब्राह्मण वर्ग थे जो भगवान को जानने वाले थे, लेकिन भक्त का ऐसा अपमान भगवान कभी नहीं सहन कर पाते। तो उस जमाने ये जब इन लोगों को काफी शिक्षा मिली तो फिर से यज्ञ तो करना ही था, और ऐसे यज्ञ में यानी कि जो लोग भगवान के विशुद्ध भक्त नहीं है, भगवान के भक्त नहीं है लेकिन भगवान की ओर से ऐसे सकाम बुद्धि वाले सभी थे, तो उन लोग के बीच में यज्ञ के आहुति में भगवान प्रकट होते। तो उन्होंने अपना हिस्सा लिया और यज्ञ की सफलता जाहिर की। तो ये यदि भगवान बहुत आसानी से उस समय में आते थे यज्ञ में, जब हम यहां सीखते हैं कि अपने साधना भक्ति में जब तक शुद्ध नाम नहीं लेते तब तक भगवान का प्रेम पाने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। मुक्ति होनी चाहिए, ये होना चाहिए, हाँ। और जब तक हम भाव की स्टेज पर नहीं आते, हाँ, शुद्ध भाव की स्टेज पर नहीं आते तब तक भगवान का दर्शन होता ही नहीं। तो ये क्यों? जो लोग भगवान के विशुद्ध भक्त नहीं है इनके बीच में भगवान उपस्थित हो जाते हैं, हाँ? और जो भगवान के शुद्ध भक्त के लिए इतनी रगड़ में जाते हैं और भाव की स्टेज पर आते हैं बाद में ही तो भगवान प्राप्त, ये कुछ सुसंगत नहीं लगता है। तो उसका उत्तर क्या हो सकता है? उसका उत्तर क्या हो सकता है? देखो, ये सत्ययुग त्रेतायुग में भगवान ध्यान और तप द्वारा या यज्ञ द्वारा उपस्थित होते थे, लेकिन हमने कहीं नहीं पढ़ा कि भगवान ने अपने भक्तों के साथ कुछ आदान प्रदान किया। उन लोगों की जो इच्छा भौतिक इच्छा थी प्रजा पैदा करने के लिए, हाँ, ये सब यज्ञ विधि इत्यादि का पालन करते थे तो उसको मंजूरी देकर चले गए, हाँ? लेकिन यहां विशुद्ध भक्तों के साथ जो भाव में जुड़े हैं आसानी से प्रकट नहीं होते हैं, और जब प्रकट होते हैं तो अपनी अहित की कृपा से क्या क्या उनके साथ आदान प्रदान करते हैं वो देखो, हाँ? वो भौतिक सृष्टि के संबंध में ही भगवान के पास अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, वो सकाम भक्त है। तो विष्णु के रूप में आकर तुरंत काम फटाफट करके चले जाते हैं। ध्रुव महाराज के साथ भी ऐसा हुआ था, हैं? ध्रुव महाराज ने अपने पिता से भी ज्यादा बड़ा साम्राज्य की हठ ली और इतनी कड़ी तपश्चर्या की, भगवान प्रकट हुए, हाँ, तब वो कुछ नहीं कह पाता, हाँ, रोने लगता है, अंदर अंदर उसके भाव जागृत होते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं अरे मार गोली इन भावों को, चल बोल, तू जो चाहता है तो मैं तुझे देने आया हूं, लेकिन बोल भी नहीं पाता तो उसको शंख मत्थे पर अड़ाया, हाँ? तब जब आंख खुली तो बोलने लगा भक्ति की बात है, भगवान की मार गोली जा। यहां भाव की आपले नहीं है, भगवान के नहीं, तेरी इच्छा पूर्ण करने आया हूं, दूसरी बातें मत कर, हाँ? तेरी इच्छा पूर्ण करने आया हूं। तो ध्रुव समझ गया तो भगवान एक और ज्यादा वरदान दे दो, मैं माया की लंब चपट में नहीं आऊं, इतना बड़ा साम्राज्य इतनी बड़ी उम्र देकर ब्रह्मा जी की उम्र देकर आप मुझे लाभान्वित तो करते हैं कि वो मेरी मूर्खता वाली इच्छा है, तो अवश्य हरे कृष्णा आप मुझे एक और वरदान दे कि मैं माया के चंगाल में नहीं फंसू। हाँ हाँ वो ठीक है, लेकिन मार्गल अभी तो मैं जा रहा हूं। कोई ऐसा भगवान के साथ भावों की आपले इतनी मात्रा में हुई नहीं है, भाव की आपले नहीं हुई। तो आप ताजुब करोगे कि जब परीक्षित महाराज वैसे भगवान के ही तो प्रतिनिधि थे, उनकी प्रतिष्ठा कि ये भगवान से रक्षित थे माता के गर्भ में से, और ये विशुद्ध भक्त हैं, कली को ढूंढने जा रहे हैं कि कहां है मेरे राज्य में कौन घुस सकता है। तो ऐसे देशों में भी जो लोग इनकी प्रतिष्ठा जानते हैं, पांडवों की प्रतिष्ठा जानते हैं और ये भगवान के संबंध में उनके गुणगान कर रहे हैं। क्योंकि देखो ये भगवान इनके मित्र थे, इनके सहृदयी थे, उन्होंने सारथी बनने का भी चुना, उनका दूत बनने के लिए भी चुना, उनके लिए चौकीदारी भी की, तलवार देकर, सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, तलवार लेकर रात को जब सोते थे तो चौकीदारी की थी। कोई प्रसंग याद है, पांडवों की रक्षा भगवान ने इस ढंग से की थी, तलवार से चौकीदारी की। ज्यादा सुनने में तो नहीं आया लेकिन होना ही चाहिए, नहीं तो सुखदेव गोस्वामी झूठ बोलते हैं क्या, नहीं बोला। ये हकीकत है कि भगवान की, भगवान भक्तों की रक्षा इस ढंग से भी कर सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं होना चाहिए, चाहे हमें प्रसंग पता है या नहीं उसे क्या लेना देना। जब भगवान भक्तों के अनुरूप प्रत्युत्तर देने के लिए, इनके भावों की तुष्टि करने के लिए ऐसा काम करने में इनको शर्म नहीं आती, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस्तथैव भजाम्यहम्। जो जितनी मात्रा में शरणागति लेता है उतनी ही मात्रा में भगवान उसको प्रति साथ देते रहते। तो पांडव भगवान पर कितनी आस्था रखते थे, कितने भगवान के साथ अंतरंग जुड़े होंगे, और ये सभी अपने अपने भावों के अनुसार भगवान के साथ चेष्टा करते थे। और भगवान ने भी ज्ञान ही किया, युधिष्ठिर को प्रणाम करते हैं, भीम को भी प्रणाम करते हैं, अर्जुन को आलिंगन देते हैं, और नकुल और सहदेव इनको प्रणाम करके इनको आशीर्वाद देते हैं। हर एक पांडवों के साथ उन्होंने ये, भगवान कुंती को प्रणाम करते थे, उनकी बुआ थी, लेकिन कुंती जानती है ये भगवान सिर्फ नटखट नहीं है, लेकिन पूर्णतया जैसा दूसरा अपने साथ व्यवहार करता है ऐसा ही व्यवहार करने में समर्थ, उनमें अशक्य कुछ नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि भगवान अपना स्थान छोड़कर नीचे गिर जाते, नहीं, वो अच्युत है, उनकी स्थिति वही बनी रहती है, चाहे वो भाई के रूप में आए, मित्र के रूप में आए, पिता के रूप में आए, फिर भी भक्त हमेशा इनकी सर्वोत्तमता स्वीकार करके इनकी वही भाव में सेवा करना चाहते। देखो वसुदेव और देव की मां बाप बनने के लिए उनके भाव थे, सही, मां बाप बनने के लिए कितनी तपश्चर्या उन्होंने की। पहले युग में ऋषि और सुतपा जिनके बेटे हिरण्यगर्भ के रूप में वो आए, दूसरे युग में वो कश्यप और अदिति के रूप में आए, और वामन देव ने इनके यहां जन्म लिया, लेकिन ये दोनों जन्म में वात्सल्य भाव की कोई आपले नहीं हुई, बेटा मांगा है ले आ गए, लेकिन उनको वात्सल्य भाव की जाहिरात नहीं दिखी, न तो ऐसे ऐसे भाव से कुछ ज्यादा आदान प्रदान हुआ। वसुदेव और देव की के रूप में तीसरे युग में आए तो सही, लेकिन चतुर्भुज नारायण रूप में आए, ये नारायण रूप जब प्रकट होता है, विष्णु रूप जब प्रकट होता है, वो किसी के साथ भावों की आपले नहीं करते, सब मर्यादा, आपकी इच्छा मैं पूर्ण करूंगा, लेकिन मेरे साथ भावों के साथ आप आपले नहीं कर पाओगे। वैकुंठ लोक में मुक्ति मिलती है साष्टी सामिप्य सालोक्य और सारूप्य, चार प्रकार की मुक्ति मिलती है, सायुज्य का कोई हिसाब नहीं होता है, सही, तो चार प्रकार की मुक्ति में ये तो भक्त अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान को बचता है और पाता है। वहां भावो कहा, भाव का कोई नाम निशान नहीं होता। सब चाहते हैं, यदि भावों की अपेक्षा देखें तो विशुद्ध भक्ति में ही हो सकती है, सकाम भक्त में नहीं हो सकती। यानी कि जब विशुद्ध भक्त सिर्फ भगवान पर आश्रित हैं और पूर्ण रूप से भगवानमय जीवन बिताना चाहता है, भगवान की ओर से प्रतिनिधित्व करना चाहता है और भगवान का हेतु के अलावा दूसरा कोई अपने कार्य में हेतु नहीं रखता, यानी चाहे वो नौकरी कर रहा है, चाहे युद्ध खेल रहा है, चाहे व्यापार कर रहा है, चाहे शिक्षा दे रहा है, उसमें भगवान की ही सर्वोपरिता धारता है, सर्वोपरि, उसके अलावा कुछ है। तो भगवान उनके भाव जिस ढंग से वो भगवान की शरणागति ले रहा है उसमें भाव होते हैं, तो विशुद्ध भक्ति में ही भाव पैदा हो सकते हैं। प्रभुपाद ने हमने विशुद्ध भक्ति करने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की, अन्यथा कोई हेतु नहीं तो एक सब कुछ हो जाएगा, देवता भी आ जाएंगे। नहीं, एक कृष्ण को रखा है और गोलोक वृंदावन के कृष्ण को रखा है, सही। यदि कई जगह रुक्मिणी द्वारकाधीश है, राधा पार्थ सारथी भी है, दिल्ली में राधा पार्थ सारथी, तो कई लोग आलोचना करने लगते हैं कि ये कैसा भाव है, पार्थ सारथी तो अर्जुन के साथ जब थे वहां राधा कहां है। ऐसे कई महाराजों ने जो गौड़ीय महाराज हैं उन्होंने आलोचना की है, उनको पता नहीं कि ये क्या चीज है। प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, किसी भी अवस्था में राधा रानी की अंतरंग शक्ति हमेशा साथ में होती है। जो राधा रानी लादिनी शक्ति है, भगवान को ऐसे भक्तों के साथ आदान प्रदान करना, यानी कि भावों का आदान प्रदान करना, वो इनकी स्वयं की लादिनी शक्ति का स्वरूप है। यानी कि अर्जुन का रथ हांकते समय लादिनी शक्ति का प्रयोग भगवान कर रहे हैं, अर्जुन को पता नहीं होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि राधा रानी उपस्थित नहीं है, राधा पार्थ से इतना तगड़ा जवाब दिया है प्रभुपाद जी ने। तो जब विष्णु प्रकट होते हैं तो भावों की आपले करने के लिए नहीं होते, इसीलिए देवकी वसुदेव ने प्रार्थना की और तुरंत कह दिया, नहीं नहीं हमें तो आप मूल रूप में बच्चे के रूप में प्रकट हो, तब आप विचार करोगे कि देवकी वसुदेव ने इतनी कड़ी तपश्चर्या इत्यादि की, तपश्चर्या कर सकते हैं लेकिन प्रेम भक्ति के लिए कितना किया। तपश्चर्या की, बहुत सारा सहन कर दिया, भगवान आने वाले हैं, तो इनको छोड़कर यशोदा और नंद के घर क्यों चले गए लीला करने के लिए, भावों के आपले करने के लिए, और वसुदेव और देवकी दोनों को वंचित रखा। ये कितनी अहितु की कृपा भगवान करते हैं वसुदेव और देवकी पर नहीं, नंद और यशोदा, क्योंकि वो विशुद्ध भक्त कहलाए जाते, भक्ति की भी कैटेगरी होती है। हमने एक उदाहरण दिया कि देखो, सर्वप्रथम बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी जानते नहीं कि भगवान कौन है, अत्रि अनुसया की बात आती, इनको पता ही नहीं था कि ब्रह्मा भगवान है, विष्णु भगवान है या शिव जी भगवान। इन्होंने तीनों को आमंत्रण कर दिया, इसलिए तीनों आ गए। और बाद में कहते हैं कि हमें तो बेटा चाहिए, तो तीन क्यों आ गए? आप में से कौन भगवान? ये इनको जानकारी नहीं, तपश्चर्या द्वारा सब कुछ कर लेते। तो सब कहने लगे, पहले तो हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर लें, तीन बेटे होंगे ही होंगे। ब्रह्मा जी ने सोम पैदा किया, सोम चंद्रमा का देवता है। शिव जी ने दुर्वासा मुनि पैदा किए, और विष्णु जी के ले दत्तात्रेय के रूप में मैं आऊंगा। ठीक, अब दत्तात्रेय भगवान का अवतार है, लेकिन इन्होंने अपने मां बाप को शिक्षा देने के लिए निर्गुण तत्ववाद सिखाया, भक्ति नहीं सिखाई। भक्ति नहीं सिखाई, भक्ति का कर्तव्य के लिए तो विशुद्ध था। जहां आसक्ति, भाव और प्रेम ये तीनों मजबूत होते हैं, वहां आए रागानुगा भक्ति, स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस पैदा हो सकती है। तो जो सकाम भक्त हैं, जो निपट ब्राह्मण हैं, जो ब्रह्म को जाने वाले हैं, वो विष्णु को स्वीकारते हैं, लेकिन भावों की आपले तो है ही नहीं। कल ही ये प्रश्न आया था, हमने ऐसे ही उत्तर, और आज ये श्लोक आया। तो ये जब भक्तों के विशुद्ध भावों की चर्चा होती है, इनके भगवान के यशोगान द्वारा कि क्या क्या उन्होंने आदान प्रदान किया, तो जो भक्त किस्म के लोग हैं, ब्राह्मण है, वैष्णव, वैष्णव भी नहीं विशुद्ध भक्त, वो लोग परीक्षित महाराज जो विशुद्ध भक्त हैं, तो उनके अनुरूप चर्चा करने लगे। और ये सुनकर परीक्षित महाराज को भगवान के प्रति और भावना पूर्वक उनके लिए इतनी उछावर करने की इच्छा हो गई। तो ये बताते हैं, भक्तिं करोति नृपतिस् चरणारविन्दे। जब महाराज परीक्षित ने ये सब सुना, तो वे भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत हो गए, इनकी बैटरी चार्ज हो गई फिर से। भाव भक्ति की बात है, साधना भक्ति में भाव भक्ति सबसे ऊंची कक्षा के मानी जाती है, लेकिन ये साधकों को ही उपलब्ध है, बिना साधना कभी उपलब्ध नहीं हो। जो मानता है कि बिना साधना हम भाव भक्ति करेंगे, वो अपने को गुमराह कर रहे हैं, दूसरों को भी कर रहे हैं। मीरा की भाव भक्ति ऐसे नापी जाती है कि वो भाव भक्ति में क्या क्या नहीं बोलती थी, लेकिन जब वृंदावन आई, जीव गोस्वामी से मिली, जीव गोस्वामी ने सीधी रगड़ की और चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया कि अभी अभी भगवान अंतर ध्यान हो गए, और इस ढंग से समझाते हैं भगवान का नाम स्मरण के द्वारा ये सारी भक्ति का प्रयोग करना चाहिए। तो जो विरह के गीत गाने वाली मीरा ये सब छोड़ छाड़ करके कह रही है कि अब तो हरि नाम लव लागी, अब मुझे भगवान के नाम के प्रति ही अब आकर्षण हुआ है। मात जत सोमति माखन काज, जाके बांधे पांव। श्याम किशोर भयो नव गौरा, चैतन्य जाको नाम। एक सूरदास ने नहीं कोई पद गाया, न तो कोई तत्कालीन बहुत सारे लोग हैं, नरसिंह मेहता ने भी पद नहीं गाए,
चेतन महाप्रभु के बारे में, लेकिन नानक नरसिंह मेहता और ये अपने पंडरपुर के तुकाराम, इन तीनों को चेतन महाप्रभु मिले हैं और उल्लेख भी है। गुरु नानक, हाँ गुरु नानक और चेतन महाप्रभु की मुलाकात जगन्नाथपुरी में, वो भी प्रचारक थे नानक, तो नानक की पोटेंसी भगवान नाम ने जो विश्वास इत्यादि सब चैतन्य महाप्रभु ने पहचाना। उस समय बहुत कंगाल हालत में थे वो, तो चैतन्य महाप्रभु ने अच्छी जगह दिलवाई है और ठीक ढंग से इनको चलो प्रचार करो। रथ यात्रा में दोनों नाचे हरि कीर्तन साथ में, ऐसा सारा उल्लेख गुरु ग्रंथ साहिब में भी है और अन्य जगह भी है। उसी तरह चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से द्वारका, द्वारका से जूनागढ़ की ओर से, और तो जूनागढ़ में नरसिंह मेहता थे, तो उनका एक शिष्य था उस समय कृष्णदास, उसने डायरी लिखी थी, तो डायरी के आधार पर यह भी साबित होता है, नहीं तो गुजरात में नरसिंह मेहता की जन्मतिथि को मानी नहीं जाती, तो लेकिन एक आधारभूत प्रमाण मिला है कि इस तरीके में इनको मिले हैं, क्योंकि डायरी रखी है, चैतन्य चरितमृतम सारी डायरी से लिखी गई है, चैतन्य भागवत भी वृंदावन दास ठाकुर ने डायरी द्वारा लिखी, गप्पे नहीं मारे किसने। तो जब तक इतिहास का संबंध है उसके पीछे अपने जमाने के अनुसार नक्कर सत्य तो प्राप्त करने ही चाहिए। पंडरपुर में वो गए विश्वरूप की समाधि, वहां है चेतन महाप्रभु के बड़े भैया जिन्होंने घर त्याग करके संन्यास ले लिया था, वो पंडरपुर में आए थे, उसकी समाधि वहां है, तो उसके बहाने वो तुकाराम से मिलते हैं और भगवान नाम में भी उनका आधार है। फिर सुबह थोड़ी इधर उधर होगी, लेकिन चेतन महाप्रभु के आविर्भाव के समय के ये लोग हैं जिसे भारत में भक्ति का उदय काल इतिहास में लिखा जाता है। उदय काल भक्ति की शुरुआत इस भक्ति मूवमेंट एक साथ में, तो जहां चेतन महाप्रभु के अनुयायी हम लोग हैं, तो उन्होंने जैसे सिखाया रूप गोस्वामी ने, हमने चर्चा की कल, तो उसी के अनुसार ये साधना भक्ति में आदौ श्रद्धा ततो साधु संग भजन क्रिया अथा अनर्थ निवृत्ति श्या तपो निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, ये नव क्रम से हम आगे प्रगति करें। तो यहां जो आपले बता रहे हैं तो भगवान भक्तों विशुद्ध भक्तों के भावों की ही आपले बता रहे हैं। तो जब प्रश्न था कि वैसे बिना भाव ये भगवान कैसे प्रकट हो गए यज्ञ में, और ये तो भक्त थे ही नहीं, कोई सकाम भक्त थे, कोई बाकी तो सब मायावादी जैसे थे, उनके बीच में भी भगवान प्रकट हो गए। कल आपको मैंने ईमेल बताई थी ना, उसकी चर्चा हो रही, आज का श्लोक उसके आधार पर कि भगवान ने पांडवों के साथ किन किन भावों से आदान प्रदान की। सॉरी आई एम जस्ट टॉकिंग टू द पर्सन बिहाइंड यू, सॉरी, but it's good that you are listening. Krishna will infuse energy in you. विशुद्ध भक्ति में भाव पैदा हो सकते हैं, विशुद्ध भक्ति में वहां भाव प्रत्येक कृष्ण भगवान आदान प्रदान करते हैं। जिन लोगों को उतावली है ऐसे रागानुगा भक्त लोग भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो देहात्म बान या मुक्ति की बात नहीं करते। जैसा हूं मैं तो आपके साथ होली खेलूंगा भावों की आपने करते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जहां कोई परवाह नहीं करता। भक्ति का प्रकार है, रागानुगा भक्ति भी सिद्धि कर सकते हैं, लेकिन कोई कुशल गुरु हो उसके मार्गदर्शन में। आप देखोगे कि ये जो निम्बकाचार्य जिनमें गोपियों के भाव की सर्वोच्च श्रेष्ठता बताई जाती है, चैतन्य महाप्रभु ने ये बात उसके उपरांत राधा रानी की सेवा इन भावों दोनों की महत्ता स्वीकार करके ये अचिंत्य भेदाभेद तत्वों में स्वीकारी है। उसी तरह रामानुजाचार्य से भी दो बातें स्वीकारी है, उसी तरह विष्णु स्वामी संप्रदाय से भी दो बातें स्वीकारी है, और मध्वाचार्य के संप्रदाय में से भी दो दो बातें ये नवद्वीप महात्म्य में बताया जाता है। तो उससे चैतन्य महाप्रभु ने बढ़िया ढंग से भक्ति की जो विशुद्ध भक्ति की स्थापना की। दोनों चार संप्रदायों में से जैसे रत्न निकाले ऐसी दो दो बातें ग्रहण करके ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व के आधार पर कृष्ण भक्ति का स्वरूप किया है। तो उनकी परंपरा में हमें रूप गोस्वामी सिखाते हैं, जबकि चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को प्रचार करने के लिए कहा तो उस समय कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद जानवा माता जी ने भी प्रचार किया, उस समय भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। चैतन्य नित्यानंद प्रभु के बेटे वीरभद्र ने भी थोड़ा प्रचार किया, लेकिन उसके बाद सारा वोटर डाउन हो गया। तो भाव भक्ति का इमिटेशन होने लगा, लोग उतावली करने लगे, जिसे सारा संप्रदाय असार बन गए। असार बन जाता क्योंकि लोग भावना के पीछे इतने दौड़ते हैं, लेकिन जो देहात्म बांध की छोड़ने की आवश्यकता नहीं समझते, और इससे मुक्त न होकर हम जैसे दूषित भावों से भी हम भक्ति करें, ऐसा इन्होंने ठाना। लेकिन हरिदास ठाकुर उसे पहले काफी सावधानी बता चुके हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक अनर्थ की निवृत्ति नहीं होती तो निष्ठा नहीं पैदा होती। ये रूप गोस्वामी की शिक्षा है और उनकी शिक्षा भी है। तो निष्ठावान भक्त को भगवान के नाम में रुचि लगती है, निष्ठावान भक्त को ही भगवान के नाम में रुचि लगती है। ये रुचि यानी टेस्ट, नाम का रसास्वाद, क्योंकि नाम तो रसम मूर्ति है। राम चिंतामणि कृष्ण से चैतन्य रस विग्रह, रस विग्रह यानी कि रस का स्वरूप है ना। तो ये सारे रस कैसे पैदा होंगे? जब तक निष्ठा नहीं है तब तक रस पैदा नहीं होंगे, और जब तक अनर्थ की निवृत्ति नहीं करते तब तक निष्ठा नहीं होगी। निष्ठावान भक्त मुक्ति के लिए लायक है, वो मुक्त हो सकता है देहात्म बान से, तभी तो भगवान के नाम पर केवल आधार मानकर वो अपनी भक्ति आगे बढ़ा सकता है। वो नौकरी नहीं करता निष्ठावान भक्त, इसलिए हमें परेशानी आती है। सिर्फ भगवान की नौकरी करो, नौकरी करना है तो 100% कृष्ण भगवान के लिए। मेरा 1% भगवान आपका 99% नहीं, भगवान के संबंध में सारा परिवार भी यदि कृष्ण भक्ति में लगता है तो ऐसे गुरु जैसे पिता के आज्ञा का पालन करने लगता है और सभी ठीक ढंग से हो जाते हैं। निष्ठावान भक्त, तो निष्ठावान लभते ज्ञानम, जिस ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा मुक्त संघर्ष जायते मुक्ति होती है, मुक्ति के बाद हरिनाम में रुचि लगती है, टेस्ट आने लगता है, उसके बाद आसक्त बन जाता है। वहां आसक्त बन लट्टू बन जाओ, भगवान के नाम में ही रस नहीं लगता तो हमें जरा कहते हैं कल देख लेते आज क्यों टालते रहते, ये परेशानी है क्योंकि हम पद्धति सर आगे नहीं बढ़ते। तो जो आसक्त है भगवान के नाम पर, तो आसक्ति भाव और प्रेम ये तीनों रागनुग भक्ति के लक्षण बताएंगे। जो बिना मुक्त हुए बिना रस चखता नहीं, क्योंकि वह दुनियादारी बहुत कर रहा है और मान्यता के अनुसार वृंदावन में लोग आते हैं होली खेलने के लिए आते हैं और गाते हैं, अब कहां छोड़ के जाओगे बिहारी, अब तो होगी होली हमारी तुम्हारी। भगवान के साथ ऐसा व्यवहार जो लायक नहीं है वो व्यवहार कर, तो इनके भाव में स्थिरता नहीं। भाव है काम चलाओ, जैसे दिल्ली पहुंचेंगे रगड़ में उतर जाएंगे, कहां गया भाव उस समय। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि इन लोगों के भाव शुद्धि न होने के कारण अनेक अनेक युगों तक भी उनको स्टेडी भाव नहीं पैदा होता, स्थायी भाव पैदा नहीं होता अनेक अनेक युगों तक, यानी कि बीच में लटकते रहते, बारंबार भक्ति करने में रगड़ पड़ेगी। जबकि यदि कोई रूप गोस्वामी की विधि भक्ति के अनुसार प्रगति करता है तो उसे स्थिर भाव स्थायी भाव पाने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपने गुरु शिष्य परंपरा की प्रतिष्ठा है, उसे संभाल संभाल कर आगे बढ़ना चाहिए, कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। नहीं तो परीक्षित महाराज जैसे विशुद्ध भक्त भगवान के भावों में क्यों अभिभूत हो जाए। उन्होंने तो एक ही बार दर्शन किया था, लेकिन सारी जिंदगी उनके कहे अनुसार राज्य करना जो उनको विरासत मिली थी पांडवों के द्वारा, तो वो ही अदा कर रहे थे, वो उनकी भक्ति बन जाती है क्योंकि भगवान को समर्पित है। भगवान के दर्शन तो एक बार ही किए थे, लेकिन और करना चाहते हैं, और आदान प्रदान करना चाहते हैं। उनको मिलता क्या है, श्राप मिलता है कि 7 दिन में मर जाओगे। सही, तो जीते जी ऐसी रगड़ में कौन जाएगा, जो देहात में पानी है उसको पता नहीं चलेगा। हम ऐसी भक्ति करते देखो ये हालत हुई परीक्षित महाराज की, हम क्यों जाएं। अरे परीक्षित महाराज की ये हालत इसीलिए है कि 7 दिन में वो भगवत धाम जा रहे हैं, तो 7 साल नहीं, 70 साल का बूढ़ा होगा तभी वह वहां का वहां रहेगा, उसका क्या है, कुछ आगे तो बढ़ो। तो विशुद्ध भक्ति के प्रचार में भगवत प्राप्ति जो लक्ष्य है, तो यज्ञ द्वारा जैसे भगवत प्राप्ति यानी कि दर्शन मिले लेकिन आदान प्रदान नहीं करे तो फायदा क्या है? जैसे दो प्रेमियों ने शादी कर ली, बाद में तुरंत छूटे हो गए, न लेना न देना, सब एक दूसरे के ख्यालों में ही जी पाएंगे क्या, आदान प्रदान तो रहा ही नहीं। तो उसी तरह भगवान की विशुद्ध भक्ति में तो 24 घंटे आदान प्रदान है, तो वही तो लीला में प्रवेश कर सकता है। भक्त्या तु अनन्यया शक्या अहम एवं विदो अर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप, केवल अन्य भक्ति के द्वारा ही। अबे ये कौन सी भक्ति आ गई अन्य, क्योंकि दूसरी भक्तियों में अन्यता है, यहां अन्य भक्ति, भगवान के अलावा कुछ नहीं, भगवान इतने ही है क्या, इसके अलावा बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन भगवान को सर्वांगी रूप से स्वीकारना, इसमें भगवान की ही प्रतीपना, तो ये अनन्य भक्ति का लक्षण है। निरनित भी गा लिया था अनन्य भक्ति के बारे में, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, लेकिन वो भाव स्थिर नहीं, स्थिरता वाले भाव, दूसरों को वो शिक्षा नहीं दे रही है, नहीं तो उसने अपना कोई संप्रदाय छोड़ा है। वृंदावन में एक मंदिर है मीराबाई का, लेकिन वो औरत झगड़ालू है, आप यदि दान नहीं दोगे तो आपकी खैर नहीं छोड़ेंगे। उसके मंदिर में छोटा सा मंदिर है, मीराबाई का मंदिर कहते हैं, लेकिन वो पैसे के ही लालचू, सब जगह सब देते हैं, हमारे यहां ही कोई नहीं देते हैं, और आप कुछ भी बोलने जाओ तो दबकाएगी, और दोबारा हम वो मंदिर में जाए नहीं, मीराबाई के नाम पर वो पैसे कमाना चाहती है, भक्ति की कोई बात नहीं सुननी मिलेगी, भगवान के विरह में मीराबाई जैसी वो जीती नहीं, सब तमाशा जो है। हमें तो ये शिक्षा यहां प्राप्त होती है कि भगवान अपने विशुद्ध भक्तों के साथ अहिति कृपा करके ही ऐसे भावों में लीला करते, जो आदान प्रदान, यानी कि जब भक्त करेंगे तो भगवान भक्ति करेंगे, ऐसा व्यवहार बहुत कम देखने को मिलेगा। भगवान के ये मूल स्वरूप के साथ ही भगवान कृष्ण और विष्णु में क्या अंतर बताया जाता है, वैसे तो तत्व में कोई अंतर नहीं है, कहीं विशिष्टता में अंतर है। बताओ, पढ़े हैं, पढ़ने हैं, है? चार चीजें हैं, कौन से क्या क्या, वेणु माधव मोती, सबसे ज्यादा महत्व का है कि भगवान श्री कृष्ण अपने विशुद्ध भक्तों के साथ घिरे हुए हैं, ही इज ऑलवेज इन एसोसिएशन विद हिज प्योर डिवोटीज, जबकि विष्णु भगवान नहीं, चलो कौन आदान प्रदान करता होगा, भगवान कृष्ण के अलावा विष्णु नहीं करता, दे दे बिजनेस खत्म, बिजनेस खत्म। तो प्रभुपाद जी ने ये प्रणाली का विशुद्ध भक्ति की दी है हमें, तो हमें और चीजों की के पीछे मेहनत नहीं करनी, ये सबसे ऊंची प्रेम सजा है। तो यहां हमें काफी ध्यान देना पड़ेगा, कोई प्रश्न है? हरि बोल। लेकिन आज के नहीं मिलते। प्राथमिकता नंद यशोदा माता के बड़े भाग्य की चर्चा कर सकते हैं कि जो देवकी वसुदेव से भी जा रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि देवकी वसुदेव के भावों को भगवान ने बाद में प्रत्युत्तर नहीं दिया। वो जानते थे, लेकिन ये इनकी लीला में वसुदेव और देवकी ने पूर्ण रूप से सहयोग दिया। देवकी और वसुदेव को छुड़वाने के लिए ही तो बाद में मथुरा है, और वहां नंद यशोदा के हृदय पर चूरा प्रहार करके आए। भगवान से विरह कोई नहीं चाहता। जब तक कंस को मारा नहीं तब तक देवकी वसुदेव कारागार में ही तो पड़े, तो भगवान ने छुड़वाया, बाद में भगवान उनके साथ रहे। सही ना? लेकिन ये भावों की जो आप ले तो एक विशुद्ध प्रेम की झांकी हम वृंदावन में देख सकते हैं, वृंदावन के बाहर नहीं देख सकते। मथुरा वृंदावन के बाहर आ जाता क्योंकि वहां ऐश्वर्य लीला शुरू हो जाती, प्रेम लीला, और वहां से द्वारका चले जाते हैं तो वहां ऐश्वर्य लीला चालू रहती। लेकिन वृंदावन का महात्म्य हमेशा सबसे ऊंचा पड़ा, यानी कि भगवान ने अपना सर्वांगी रूप सर्वत्र दिखाया है, कि वही एकमात्र मूल रूप है जिनसे विष्णु रूप प्रकट हुआ है इनकी लीलाओं में। और महाविष्णु के पास अर्जुन को ले जाते हैं जो एक ब्राह्मण के सारे बेटे को छुड़वाने के लिए, तो वहां भी बहुत बढ़िया ढंग से चर्चा होती है। यूं समझो तो विष्णु भगवान के नौकर लगते हैं, इनके पास जाना पड़ता है, जबकि विष्णु भगवान कुछ और ही कहते हैं। तो इसमें जो तत्व है कि भगवान कृष्ण की सर्वोपरिता बताने के लिए बहुत विशिष्ट प्रकार के नाटक होते हैं, उसमें अपना जो सिद्धांत है कि भगवान कृष्ण का मूल रूप है उसकी सर्वोपरिता विष्णु से भी ऊपर है, यह अंतिम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की कॉमेंट्री, भक्ति विनोद ठाकुर की, सब अपनी परंपरा की कॉमेंट्री में ये जब समझ हमें प्राप्त होती है तब सब हमें ये निर्णय पर आना पड़ता है कि ये बहुत उत्तम है कि भगवान श्री कृष्ण को ऐसे आचार्यों ने हमेशा 100% मार्क दिए हैं। वो गोविंदमादि पुरुषम तम अहम बना, जबकि विष्णु को कितने 95% इतनी सारी विशिष्टता जब प्रदर्शित नहीं करता, जो व्यक्तित्व प्रदर्शित नहीं करता तो पूर्ण रूप से उसको मार्क नहीं दिया जाता। जो सब कुछ प्रदर्शित करता है तो 100% मार्क के। तो कृष्ण भगवान के चरित्र में 100%, विष्णु भगवान के चरित्र में 95, कम से कम 92-91% अवतारों में दिया जाता है। लेकिन सभी अवतारों में, जीव तत्व के अवतारों में अलग, जो जो जीव तत्व एम्पावर्ड हुए यानी कि शक्ति आवेश बने उसमें कम। ये हरिदास ठाकुर सब कुछ बताते हैं हरिनाम चिंतामणि। हमें अवगत रहना क्या instruction that we are given, that we have to hear the syllables, that we vibrate. So a proper attention is created. If we do not hear what we are chanting, means we are allowing the mind to escape those gates. The first and foremost, the solid gate is of ears. Ear. It is said that one should hear first and then chant. Hearing is given a prime importance over chanting. Sometimes our mind is restless, means we are always absorbed in whatever the mind dictates. But we have to force the vibration of the holy name into our ears and allow it to penetrate all the way up to the heart. Then and then we will get the strength from the holy name. सताम प्रसंगा मम वीर्य संविद भवंति रद कर्ण रसायन कथा। रद कर्ण कृष्ण इन द फॉर्म ऑफ कपिल देव इज इंस्ट्रक्टिंग देवहूति दैट इन द एसोसिएशन ऑफ द वर्ड इज द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम मस्ट बी प्रॉपरली हर्ड फ्रॉम द ईयर टू द हार्ट वेयर द मेलोज of the holy name can be exchanged between ear and heart. When we are too busy to listen our mind, then we hear from one ear and let it go out through without touching our heart. Or we may hear and try to think about. Both the processes are very weak to chant steadily, attentively. So one has to do some analytical study upon his chanting. That where is the pinprick? Then try to correct it
So proper attentive hearing will be attained if we allow the holy name that we vibrated to go through our heart. So proper hearing will be justified and attention will be obtained. Other senses are weak. We have to shut their windows too. Because mind is restless. If you forcefully close only one window of ears, it may escape through others. So, chanting on the beats is thus designed to concentrate all our senses, not only on vibration, but clarity of the vibrations through the tongue by proper pronouncing and counting diligently each beat for one mantra and progressively go. Don't cross over the Krishna beat in order to keep your awareness. Otherwise, understand that you are offending Krishna. So you will not dare to cross over again. So these are all attention creating, you know, media in taking up the beads. All five senses can be engaged in chanting on the beads. So if we engage the senses in the service of the master of the senses, that is called bhakti. Therefore, taking mala becomes a very important first step towards, you know, establishing a firm foundation of devotional service. Is it clear?
Jai Shri Prabhupada. Nitai Gaur Prema.